फैज़ आयू को सज़ा देने के लिए उसके पीछे चेंजिंग रूम में चला गया। वहां उसने आयू को फिजिकली असॉल्ट किया और फिर उसके हाथ पर चाकू से कट लगाकर वापस आ गया। इन सब से आयू काफी डर गई थी। वहीं आयू के काफी देर तक नहीं आने पर आरव और अयान उसके पीछे चेंजिंग रूम में आए। उन्होंने देखा आयू वहां पर जमीन पर बैठकर रो रही थी। वो काफी डरी हुई थी। चेंजिंग रूम के अंदर कोई कैमरा नहीं था, लेकिन बाहर के कैमरा चेक करने के लिए अयान सीसीटीवी रूम में गया, तो वहीं आरव आयू को लेकर खुराना मेंशन जा रहा था। आरव ने आयू को गोद में ले रखा था और उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, पता नहीं हमारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता। ऐसा लगता है जब सब ठीक होने वाला है तब कोई ना कोई बीच में आ जाता है, या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हमारी बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। तुम उस इंसान की वजह से मुझसे डर रही हो और मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। पता नहीं सबको मेरी वाइफ ही मिलती है क्या बुरी नजरें डालने के लिए। आरव ने देखा आयु इस वक्त काफी डरी हुई थी और उसे कस के पकड़ रखा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। ऐसी सिचुएशन में आरव खुद ड्राइव करके आयु को अपने पास नहीं बैठा सकता था। उसने इधर उधर देखा तो ड्यूटी शिफ्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे थे। जो गार्ड्स ड्यूटी पर थे उनकी शिफ्ट खत्म होने पर वो वापस घर जा रहे थे। उनमें से एक को आरव ने आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। गार्ड के पास आने पर आरव ने कहा, मेरी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, ये यहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, क्या आप हमारे लिए ड्राइव कर सकते हैं? मुझे इसे लेकर घर जाना है और इस सिचुएशन में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने आयु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ड्राइविंग सीट पर आ गया था, जबकि आरव और आयु पीछे की सीट पर थे। आरव ने बीच में पार्टीशन लगा दिया था। पूरे रास्ते आयु ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने आरव का ब्लेजर एक कोने से पकड़ रखा था ताकि वो उससे दूर ना हो सके। आरव को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और ना चाहते हुए भी उसे उस दिन वाली बात याद आ गई जब आरव ने आयु को अकेले छोड़ा था और उन चार लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, क्या खाक ट्रेनिंग दी है जहां तुमने इसे ठीक से खुद का सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पा रही है। आधे अधूरे काम करने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। कुछ ही देर में वो दोनों खुराना मेंशन के आगे थे। सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से बाहर निकला और उनके लिए दरवाजा खोला। रास्ते में आयु सो चुकी थी तो आरव ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर लेकर आया। बाहर आते ही आरव ने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पैसे दिए और कहा, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। आप जैसे कुछ अच्छे लोगों की वजह से इस दुनिया में इंसानियत कायम है। आरव से बात करते हुए सिक्योरिटी गार्ड की नज़र आयु पर गई। उसे देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैं डॉक्टर ओबेरॉय को जानता हूँ, बहुत बार उन्होंने हमारी मदद की है। चलो किसी तरह उनका एहसान चुकाने का मौका तो मिला, लेकिन उनकी ये हालत किसने की? बस उसी का तो पता लगाना है। प्लीज़ आप ये पैसे रख लीजिए, वरना मेरे मन में गिल्ट रहेगा कि पूरे दिन काम करने के बाद इतना थकने पर भी मैं आपको अपने साथ ले आया। वैसे भी ये काम आपकी डॉक्टर ओबेरॉय का नहीं, मेरा था। आरव ने जवाब दिया और ज़बरदस्ती गार्ड को पैसे पकड़ा दिए। उसके बाद गार्ड वहां से चला गया और आरव आयु को लेकर अंदर आ रहा था। कबीर ने अपने रूम की बालकनी से आरव को आयु के साथ देख लिया था। वो जल्दी से नीचे आया। आयु को इस तरह आरव के गोद में देखकर कबीर ने हैरानी से पूछा, आप तो पूरी रात हॉस्पिटल में रुकने वाले थे ना, मैम को क्या हुआ? आपने उन्हें इस तरह उठा क्यों रखा है? आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़कर कबीर को वो सब बता दिया जो हॉस्पिटल में हुआ था। पूरी बात बताने के बाद आरव बोला, एक काम करो, तुम अभी हॉस्पिटल जाओ और अयान से मिलो, उसे तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है। जिसने भी ये काम किया है मैं नहीं चाहता कि वो मौका देखकर वहां से भाग जाए। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वैसे भी हॉस्पिटल जाने के बारे में ही सोच रहा था। आप इनका ख्याल रखिएगा, कबीर ने जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। कबीर के जाते ही आरव आयु को ऊपर लेकर आया और उसे बेड पर लेटा दिया। आरव की निगाहें आयु की चोट पर टिकी हुई थी। उसने आयु के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है कि चेंजिंग रूम में घुसकर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की नीयत रख सकता है? तुमने कहा था कि वो हमें अलग कर देगा, तो वो खान के आदमी नहीं हो सकते। खान के आदमी अगर तुम्हारे पास आएंगे तो वो सीधा मारकर ही वापस जाएंगे। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, पर तुम्हें कौन समझाए? बोलते हुए आरव ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। आरव को फ्रेश होकर आना था, लेकिन आयु को वो एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो उसी तरह आयु के पास आया और उसे अपनी बाहों में लेकर सोने लगा। तभी आयु नींद में भी जोर से चिल्लाई, मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मुझे आरव से अलग क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मुझे छूने का हक नहीं है, मुझे सिर्फ आरव छू सकता है, वो भी जबरदस्ती नहीं करता। फिर तुम कौन होते हो इस तरह मेरे साथ ये सब करने वाले? प्लीज मेरे मुंह के ऊपर से हाथ हटाओ, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। तुम मुझे इस बात की सजा नहीं दे सकते क्योंकि मेरा आरव मेरे पास आया था। आयु नींद में वो सब बड़बड़ा रही थी जो वो फैज से उस वक्त कहना चाहती थी। आरव समझ गया था कि आयु नींद में वही सब देख रही है जो उसके साथ उस वक्त हुआ था। जब अयान और आरव चेंजिंग रूम में आए तब वो ट्रॉमा में थी और उन्हें बता नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। अब नींद में ही सही, लेकिन आयु ने आरव को सब कुछ बता दिया था और सब जानने के बाद गुस्से से आरव के हाथ की मुट्ठियां बन गई थी। वो गहरी सांस ले रहा था। आई स्वेयर, अगर एक बार मुझे वो आदमी मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आरव ने आयु का हाथ अपने हाथ में लेकर वादा किया। आयु ने आरव को अपने करीब आने दिया था तो आरव उसके बिल्कुल पास हो गया और उसका हाथ पकड़ रखा था। पूरी रात वो उसके साथ था क्योंकि आयु नींद में भी बार बार बड़बड़ा रही थी। कभी वो आरव को खुद से दूर कर रही थी तो कभी खुद ही डर के मारे उसे पकड़ रही थी। दूसरी तरफ अयान सीसीटीवी कंट्रोल रूम में था। किसी ने फुटेज के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे उस वक्त की चेंजिंग रूम के बाहर की फुटेज मिल नहीं रही थी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सिर्फ कुछ चुनिंदा गार्ड्स को आने की इजाजत थी। ऐसे में किसी का उस कमरे में आकर फुटेज डिलीट करने का मतलब साफ था कि कोई वहां ऐसा इंसान मौजूद था जो फैज के साथ मिला हुआ था। अयान ने गुस्से में हेड सिक्योरिटी गार्ड की कॉलर पकड़ी और चिल्ला कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? यहाँ मिलने वाली सैलरी कम पड़ रही थी तो आकर बताते, इस तरह पैसे लेकर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के साथ तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, गार्ड ने घबराते हुए कहा।
गार्ड की बातें अयान को और गुस्सा दिला रही थी। वो चिल्ला कर बोला, कुछ नहीं किया है तो फुटेज अपने आप हवा में तो गायब नहीं हो गई है? पिछले 3 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से फुटेज रिट्राइव हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। अगर इनमें तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरे भाई का गुस्सा तुम सहन नहीं कर पाओगे। बोलते हुए उसने उस गार्ड की कॉलर छोड़ दी थी और उसे दूर धकेल दिया था। आरव और आयु के जाते ही अयान सीधे उस रूम में आ गया था। पिछले आधे घंटे की फुटेज देखते हुए उन्हें पता चला कि चेंजिंग रूम के बाहर की आधे घंटे की फुटेज डिलीट कर दी गई है। हालांकि सिक्योरिटी हेड गार्ड इससे पूरी तरह अनजान था, फिर भी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखना उसकी जिम्मेदारी होती थी। ऐसे में उसने कुछ नहीं भी किया था तो सारा इल्जाम उसी के सिर आना था। उसी समय कबीर सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने देखा अयान हेड सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट कर रहा है। उसे ये बात उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर फुटेज डिलीट हो गई है। कबीर अयान के पीछे खड़ा था। उसने वहीं से तेज आवाज में कहा, इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब किसी हैकर का काम है जो काफी सोच समझ कर कराया गया है। कबीर की आवाज सुनकर अयान उसकी तरफ पलटा और हैरानी से पूछा, तो क्या हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये सब किसने किया है? ऐसे में वो इंसान फिर से आयु के साथ वो सब करने की कोशिश करेगा। आरव सर के होते हुए उनकी मिसेस खुराना के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। रही बात फुटेज रिट्राइव करने की, तो हैकर के ऊपर भी हैकर्स बैठते हैं। मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी बता दूंगा कि ये काम किसका है, कबीर ने शांत लहजे में जवाब दिया। उसने सभी गार्ड्स को कमरे से बाहर भेज दिया था। अब उस रूम में सिर्फ अयान और कबीर ही बचे थे। कबीर ने उसी वक्त किसी को कॉल किया और कॉल पर कहा, तुम्हें कुछ कोड भेज रहा हूँ, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज किसी हैकर ने डिलीट कर दी है और मुझे 10 मिनट में सारी फुटेज वापस चाहिए। काम आरव सर का है और अच्छे से जानते हो ना कि उन्हें देरी पसंद नहीं है। कबीर जिससे बात कर रहा था वो लगभग 17 से 18 साल का लड़का था जो इस वक्त बड़े से कंप्यूटर स्क्रीन के आगे गेम खेलने में बिजी था। कबीर की बात सुनकर वो हड़बड़ाते हुए उठा और कहा, इतना कम टाइम मत दीजिए सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैकर ने डिलीट की है तो काफी सारे कोड्स लगेंगे, कम से कम आधा घंटा तो चाहिए होगा। ठीक है फिर 30 मिनट, उससे 1 मिनट तुम्हें ऊपर नहीं मिलेगा प्रिंस, कबीर ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। उस लड़के का नाम प्रिंस था जो कि हैकिंग वर्ल्ड में मास्टर थीफ के नाम से फेमस था। कोई नहीं जानता था कि मास्टर थीफ के चेहरे के पीछे एक 18 साल का लड़का छुपा है जो हैकिंग में मास्टर है। उसे लगभग 20 मिनट का टाइम लग गया और सारी फुटेज फिर से रिट्राइव कर ली। फुटेज कबीर को भेजते हुए उसने मैसेज छोड़ा, ये काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, उन्हें बोलिएगा मुझे मेरा प्लेस्टेशन अपडेट करना है, कुछ गेमिंग टूल्स और एडवांस कैमरा भी लेना है, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। प्रिंस का वॉइस नोट भेजते ही कबीर और अयान ने सुना तो कबीर के चेहरे पर इरिटेशन के भाव थे तो वहीं अयान हैरान था। इतने से काम के लिए 50 लाख रुपए? अयान ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर पूछा। ये यहाँ इस वक्त 1 करोड़ भी मांगता तो सर मना नहीं करते, कबीर ने सिर हिलाकर जवाब दिया और उसी टाइम प्रिंस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर उन दोनों ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और उस फुटेज को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने चेंजिंग रूम के अंदर जाते हुए फैज को देख लिया था। फैज से पहले भी मिल चुका था तो वो जानता था कि ये इजाज खान का बेटा है, तो वहीं अयान के लिए उसकी आइडेंटिटी अभी भी उस पेशेंट के रूप में थी जो आयु को गलत तरीके से देखता था। अब तो फैज को भगवान ही बचाए।